ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी में आपका स्वागत है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। इस हिंदी प्रस्तुति के प्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ हम विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रार्थना से करेंगे। भगवान के इस सुंदर भजन के बाद अब हम हमारे प्रिय स्वामी का पावन संदेश उन्हीं के दिव्य वाणी में सुनते हैं। यह दिव्य संदेश भगवान ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर दिया था, जिसे प्रशांति निलयम छात्रावास के विद्यार्थियों ने प्रेम पूर्वक उपलब्ध और अनुवादित किया है।
मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।
ప్రేమ స్వరూపులారా,
ప్రేమ స్వరూపం
జ్ఞానము విజ్ఞానము సుజ్ఞానము ప్రజ్ఞానము వీటన్నింటికంటే కూడాను గుణవంతుడైనటువంటి కుమారుడు మహా గొప్పవాడు।
జ్ఞాన విజ్ఞాన సుజ్ఞాన ఏవం ప్రజ్ఞాన ప్రాప్త్ కర్ చుకే వ్యక్తియో సే భీ శ్రేష్ఠ ఏక్ సదాచారీ పుత్ర హోతా హై।
ఈ గుణవంతుడైనటువంటి కుమారుడే వినాయకుడు.
భగవాన్ గణేష్ సద్బుద్ధికి ప్రతీక హై.
ప్రతి వ్యక్తికి ఒక గురువు ఉంటుంటారు.
ప్రత్యేక వ్యక్తికి పాస్ ఏక్ గురు హోతా హై.
కానీ వినాయకునకు ఎట్టి గురువు లేరు.
కింటు వినాయక్కి కోయి గురు నహీ హై.
అతనే సర్వులకు నాయకుడు.
వే నాయకోకే నాయక్ హై.
తనకు మాత్రం ఎవరు నాయకుడు లేరు.
ఉన్కే ఉపర్ కోయి నాయక్ నహీ హై.
కనుకనే ఇతని పేర్ల యందు వినాయక అని కూడాను సార్థకమైనటువంటి నామం వచ్చింది.
ఇసిలియే ఉన్హే ఏక్ ఉపయుక్త్ నామ్ మిలా హై. క్యూంకీ ఉన్కే ఉపర్ కోయి నాయక్ నహీ హై. వే వినాయక్ కే నామ్ సే జానే జాతే హై.
వినాయకునకు ఒక తొండం ఉంటుండాలి, అనగా ఏనుగు యొక్క తల.
భగవాన్ గణేష్ కి పాస్ హాథీ కా సిర్ హై.
తెలివితేటలు ఎందుకని, గుణములు ఎందుకని, విచారములు ఎందుకని ఏనుగుతో సమానమైనటువంటి వాడు వినాయకుడు.
హాథీ సద్బుద్ధి నిష్ఠ ఏవం వివేక్ కా ప్రతీక హోతా హై.
ప్రతి దానికి నీ విచారణ చేసి ఏనుగు ముందు అడుగు పెడుతుంది.
హాథీ ఆగే బడనే సే పెహలే అప్నే వివేక్ కా ఉపయోగ్ కర్తా హై.
అదే విధంగానే నిత్యానిత్య పరిశీలన చదివిన తర్వాతనే వినాయకుడు ముందుకు సాగుతాడు.
ఉసీ ప్రకార్ భగవాన్ గణేష్ అప్నే వివేక్ సే క్షణిక్ ఏవం శాశ్వత్ మే అంతర్ పహచాన్ కర్ హీ ఆగే బడతే హై.
గానా పాతి ఈ నాలుగు అక్షరములతో కూడాను విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానంతో కూడినటువంటి వాడు వినాయకుడు అని పేరు.
గణపతి అప్నే నామ్ కే చారో అక్షరో మే నిహిత్ జ్ఞాన్ కి శ్రేష్ఠతాకో ప్రదర్శిత్ కర్తే హై.
ఈ పూజలు జరిపినప్పటికీ వినాయకుడి పూజ మాత్రము మానరాదు.
హమ్ కోయి భీ పూజా కరే పర్ భగవాన్ గణేష్ కి పూజా కన్నా నా భూలే.
ఇట్టి సర్వులకు నాయకుడైనటువంటి వినాయకుడిని మనం నాయకుడుగా తీసుకోవటము విద్యార్థుల యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం.
విద్యార్థి యొక్క ముఖ్య కర్తవ్య హై కి వే భగవాన్ వినాయక్ కో అప్నా ఆరాధ్య మానే.
ఇట్టి గుణములు కలిగినటువంటి వినాయకుడు జగత్తులో ఎందునూ కనరాడు.
వినాయక్ అప్నే సద్గుణో ఏవం సద్విత్యో కే కారణ్ అనుపమ్ ఏవం అద్వితీయ హై.
అట్టి వినాయకుడిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకుని మన విద్యాభక్తులు ఎందు మనం నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు సర్వ విద్యలు కూడాను మనకు సంప్రాప్తం అవుతాయి.
జబ్ హమ్ వినాయక్ కో అప్నా ఆదర్శ మాన్తే హుయే ఉచిత్ జ్ఞాన్ ఏవం బుద్ధి అర్జిత్ కరేంగే తభీ హమ్ సఫల్ హోంగే.
సర్వ వేదములు, సర్వ శాస్త్రములు, సర్వ ఇతిహాస పురాణములు కూడాను అన్ని కూడాను వినాయకుడి యొక్క ప్రబోధనలనే జరుగుతూ వస్తున్నాయి.
సవి వైదిక ఉపదేశ్ శాస్త్ర పురాణ్ ఓ సారే ఉపనిషద్ భగవాన్ వినాయక్ దియేగే ఉపహార్ హై.
ప్రేమ స్వరూపులారా,
ప్రేమ స్వరూపం,
ఈ వినాయకునకు కోపం అన్నది ఎప్పుడు కూడాను లేదు.
వినాయక్ మే క్రోధ్ కా అంశ్ మాత్రమే నహీ హై.
ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ స్వరూపుడే.
వే ప్రేమ్ కి సాక్షాత్ మూర్తి హై.
ఎప్పుడు చిరునవ్వుతోనే చిందులు దొక్కుతుంటాడు.
హమే హమేషా భగవాన్ గణేష్ కే చెహరే పర్ ముస్కాన్ దిక్తీ హై.
నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం.
వే నిర్గుణ, నిరంజన్, సనాతన్, అనంత్, శుద్ధ బుద్ధ ముక్త్ ఏవం నిర్మల్ స్వరూప్ హై.
పార్వతి నాయన వినాయక ఒకతూరి రా అని చెప్పింది.
ఏక్ బార్ మాతా పార్వతి నే వినాయక్ కో అప్నే పాస్ బులాయా.
ఒక ఫలముని ఇచ్చి
ఉన్ననే భగవాన్ గణేష్ కో ఏక్ ఫల్ దియా.
సుబ్రహ్మణ్యుడు వినాయకుడు ఉండినటువంటి సమయం లోపల
జబ్ వినాయక్ ఓర్ కార్తీకే దోనో మౌజూద్ థే.
ఒక ఫలముని ఇచ్చి నాయన ఈ ప్రపంచమంతా ఒక్క రౌండ్ లోపల చుట్టుకుని వస్తే వారికి ఈ ఫలం దక్కుతుంది అన్నారు.
మాతా పార్వతీ నే కహా కి యే ఉపహార్ ఉసే మిలేగా జో సఫలతా పూర్వక్ పూరే బ్రహ్మాండ్ కి పరిక్రమా కల్ లోటేగా.
అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు తన యొక్క వాహనం ఎక్కాడు, బయలుదేరాడు.
కార్తీకే తురన్ వహాసే అప్నే రథ్ పర్ సవార్ హోకర్ చల్ పడే.
ప్రపంచాన్ని చుట్టే కోసమని
వే పూరే విశ్వకి పరిక్రమా కన్నా చాతే.
కానీ వినాయకుడు అక్కడే కూర్చున్నాడు.
కింటు భగవాన్ గణేష్ వహీ బెఠే రహే.
అడుగుతున్నాడు ఈశ్వరుడు, ఏ వినాయక నీ ప్రపంచాన్ని చుట్టుకుని రావడానికి పోవటం లేదే అన్నాడు.
భగవాన్ శివ్ నే పూచా తుమ్ అప్ని యాత్రా ప్రారంభ క్యూ నీ కర్ రహే హో.
ఆయన చెప్పాడు నవ్వు నవ్వి, తండ్రి నేను ఎక్కడికి పోనక్కర్లేదు అన్నాడు.
భగవాన్ గణేష్ ని ముస్కురాకర్ కహా పితాజీ ముజే కహీ జానే కి ఆవశ్యక్త నహీ హై.
నా దృష్టిలో సర్వము ఒక చోటనే ఉన్నది.
మేరే లియే సబ్ కుచ్ యహీ హై
అని చెప్పి ఆయన తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికి ప్రదర్శన చేసి కూర్చున్నాడు.
వినాయక్ నే అప్నే మాతా పితాకి పరిక్రమకి
అప్పుడు నేనే జయించానన్నాడు.
స్వయం కో విజేత ఘోషిత కియా.
ఇతను ఈ విధంగా చెప్పేటప్పటికి సుబ్రహ్మణ్యుడు వస్తున్నాడు.
ఉసీ దౌరాన్ భగవాన్ కార్తికే వాపస్ ఆగే.
చాలా అలసిపోయాడు.
వే బహుత్ థకే హుయే థే.
అలసిపోయి నానా నేను చుట్టుకుని వచ్చాను ప్రపంచాన్ని అన్నాడు.
పూరే విశ్వకి పరిక్రమా కర్నే కే కారణ వే బహుత్ థక్ గయే థే ఔర్ బోలే పితాజీ మే విజేతా హూ.
అనగా తల్లి తండ్రులే జగత్ కంటే గొప్ప.
వాస్తవ మే పూరే విశ్వకి లియే మాతా పితా హీ సబ్సే మహాన్ హై.
కనుక ప్రపంచమంతా చుట్టి రావాలంటే తల్లిదండ్రులను ప్రదర్శన చేస్తే చాలు.
అప్నే మాతా పితాకి పరిక్రమా కన్నా హీ పర్యాప్త హై.
కనుక భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుడు గావించాలంటే ప్రేమ చేత వారిని ఆజ్ఞను శిరసా వహించుకుంటే అంతే చాలు.
అత భగవాన్ కు ప్రసన్న కర్నేకి లియే తుమే అప్నే మాతా పితా కు ప్రసన్న కర్నా చాయే ఔర్ తుమే ఉన్కే ప్రతి భర్పూర్ ప్రేమ హోనా చాయే.
తల్లిదండ్రుల కంటే మించినటువంటి దైవం మరొకటి లేదు.
మాతా పితా సే బడా భగవాన్ కోయి వీ నహీ హై.
అట్టి తల్లిదండ్రులను మనం ప్రసన్నులు గావించుకోవడానికి వారి ఆజ్ఞను శిరసా వహించాలి.
ఉన్కో ప్రసన్న కర్నేకి లియే ఉన్కీ ఆజ్ఞా కా పాలన కర్నా చాయే.
ఏదో ఒక్కొక్క సమయం లోపల కోపించినట్టుగా కనిపిస్తారు.
కభీ కభీ ఎసా ప్రతీత్ హోతా హై కి హమారే మాతా పితా హమ్సే నారాజ్ హై.
మరు క్షణంలోనే తన మార్పు తెచ్చుకుంటారు.
అగ్లే క్షణ వే బదల్ జాతే హై.
ఇట్టి తల్లిదండ్రులను మనం కోపించుకునేటువంటి వారని మనం ఏనాడు కూడా భావించరాదు.
హమే ఎసా కభీ నహి సోచనా చాహియే కి వే హమ్సే నారాజ్ హై.
వారికి ఏదైనా ఒక విధమైనటువంటి సినిమాను పోవాలనుకుంటే డబ్బు అడుగుతారు.
సినిమా జానే కే లియే బచ్చే అప్నే మాతా పితా సే పైసే మాంగ్తే హై.
కానీ యువక్ పోయినప్పుడు తల్లికి నా పైన కోపంగా ఉంది.
పైసే నా మిల్నే పర్ తుమ్ సోచ్తే హో కి మా క్రోధిత్ హై.
మాకు సినిమాకు ఒక టికెట్ కూడా డబ్బు ఇవ్వలేదు.
ఉన్నోనే తుమే సినిమా కి లియే పైసే నహీ దియే.
అల్పమైనటువంటి కారణం చెప్పుకొని తల్లి కోపంగా ఉండేటట్టుగా భావిస్తుంటారు.
ఇతని తుచ్ ఇచ్చా కే కారణ తుమ్ సోచ్తే హో కి మా నారాజ్ హై.
అల్పమైనటువంటి దానిపైన తల్లి యొక్క కోపాన్ని మనం పోల్చుకోకూడదు.
ఇన్ ఛోటీ ఛోటీ ఇచ్చాఓ కే కారణ తుమే కభీ భీ యే నహీ సోచనా చాహియే కి వే క్రోధిత్ హై.
కానీ నిజమైనటువంటి ఒక ప్రేమనే ఉండినటువంటి సమయం లోపల
అప్నే భర్పూర్ ప్రేమ కే కారణ
తన ప్రాణాన్నైనా అర్పితం చేసి కుమారుని రక్షించుకుంటుంది.
మా అప్ని సంతాన్ కి లియే ప్రాణ భీ త్యాగ్నే కి లియే తత్పర రహతీ హై. జబ్ ఏసీ మాతాయే హై తో యే సోచనా కితనీ బడీ భూల్ హై కి మా తుమ్సే నారాజ్ హై.
కానీ తల్లి పైన కోపం కలిగినటువంటి కుమారుడు ఎంతనో ద్వేషంగా కోర్టు కూడా పోతుంటారు.
లేకిన్ ఆజ్ కుచ్ లోగ్ ఏసే హై జో అప్నీ మా సే నారాజ్ హోనే కే కారణ ఉన్హే కోర్ట్ మే లే జాతే హై.
అలాంటి కుమారుడైనా ఉన్నారు కానీ కోపం కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులు లేరు.
కుపుత్ర కా హోనా సంభవ్ హై లేకిన్ బురే మాతా పితా కా హోనా సంభవ్ నహీ హై.
కనుక ఈనాడు కుమారుని గుణములే మార్చుకుని తల్లిదండ్రులు ప్రేమ స్వరూపులు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోవటం అత్యవసరము.
ఆజ్ బచ్చో కో సమజ్నా చాయే కి మాతా పితా సాక్షాత్ ప్రేమ్ కి మూరత్ హై ఔర్ ఉన్హే ఉన్కే ప్రేమ్ కో అనుభవ్ కర్నా చాయే.
అటువంటి వినాయకుడిని మనము నాయకుడిగా ఎంచుకోవటము చాలా అదృష్టము.
యే హమారా సౌభాగ్య హై కి హమారే పాస్ హమారే స్వామీ కే రూప్ మే భగవాన్ వినాయక్ హై.
ఎట్టి పరిస్థితులు ఏం కూడా అతనికి ద్వేషం కాని అసూయ కాని డమ్మం కాని ఆడంబరం కాని రాదు.
కిసి వి క్షణ ఉన్కే అందర్ ఈర్ష్యా అహంకార్ అథవా కిసి ప్రకార్ కా ఆడంబర్ నహీ హై.
కనుక వినాయకుని యొక్క గుణములు చక్కగా మీరు తిరిజనములను ప్రాక్టీస్ లో పెట్టుకుంటే మీరు తప్పకుండా తొండము లేకపోయినా మీరు వినాయకులు అవుతారు.
అత జబ్ హమ్ వినాయక్ కే గుణో కా పాలన్ కరేంగే తో హమారే పాస్ సూఢ్ భలే నా హో పర్ హమారా వినాయక్ బన్నా స్పష్ట హై.
దివ్య సందేశ్.
లగ్భగ్ పాంచ్ దశక్ పహలే 1968 మే శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంగఠన్ కే ప్రథమ విశ్వ సమ్మేళన్ మే భగవాన్ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत से भक्त मुझसे उन्हें संदेश देने की विनती करते हैं. आज मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. भगवान ने अपने इस अवतरित जीवन काल में अपना संदेश न केवल दिया अपितु उसे स्वयं के आचरण में जीकर दिखाया. भगवान का बाल्यकाल किस प्रकार का था, उनकी बाल लीलाएं कैसी थी, उनकी वास्तविक दिव्य शक्ति क्या है, आइए अब हम सब इस साई भागवत का श्रवण करें.
श्री साईं राम। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा विशुद्ध प्रेम के अवतार हैं और बचपन से ही उन्होंने मानवता को निःशर्त व निःस्वार्थ प्रेम करने का संदेश अपने जीवन की सभी घटनाओं से दिया है। 23 नवंबर सन 1926 दिन था कार्तिक मास का सोमवार। भगवान शिव की आराधना का दिन और वर्ष था अक्षय। अक्षय अर्थात वह जिसका कभी विघटन नहीं होता। प्रभात के समय जब पुटपर्ती गांव के वासी भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यस्त थे, एक अति मनमोहक बालक ने जन्म लिया। बालक के बाईं गाल पर तिल, विशाल मस्तक, तेजस्वी चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, जो देखता बस देखता ही रह जाता। भगवान बाबा की परम भक्त डॉक्टर जयलक्ष्मी उस समय को याद करते हुए कहती हैं,
मैं भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की एक सुंदर फोटो लेकर माँ ईश्वरअम्मा के पास गई। फोटो में बालकृष्ण माखन की मटकी के पास बैठे माखन खा रहे थे। माँ ईश्वरअम्मा उस फोटो को देखकर बोली, हाँ, मेरे बालक का चेहरा भी कृष्ण की तरह ही तेजस्वी था। बाल घुंघराले थे, कंधे मजबूत और बलिष्ठ थे, पर कृष्ण की तरह हम उसे हीरे मोतियों के गहने नहीं पहना सके। हम तो गरीब लोग थे।
जो केवल अपनी इच्छा शक्ति से पूरे पर्वत के पत्थरों को मोती बना सकता है, उसने अपने जन्म के लिए पत्थरों और घास फूस से बनी झोपड़ी को चुना। बालक के पिता पेद्दा वेंकम्मा राजू बांस और घास फूस से बने एक झोपड़ी नुमा घर में रहते थे। घर में दो कमरे थे। एक कमरे में अनाज रखा रहता था और एक कमरा रहने के काम आता था। एक छोटा सा आंगन और एक रसोई थी। ऐसा घर था जिसके आंगन में बालक सत्या का बचपन बीता। माँ ईश्वरअम्मा कहती हैं कि सत्या के मुख पर सदा मनमोहक मुस्कान बनी रहती थी। वो कभी रोते ही नहीं थे। सत्या ने कभी किसी विशेष भोजन या वस्त्रों की चाह नहीं की। हिंदूपुर या अनंतपुर से कपड़ों की पोटली आती थी। पिताजी या दादाजी सभी बच्चों को अपनी अपनी पसंद के कपड़े चुनने को कह देते। सभी बच्चे अपनी पसंद के कपड़े चुन लेते थे। सत्या बचे हुए कपड़े लेकर ही खुश हो जाते। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। दूसरों को प्रसन्न देखकर ही उन्हें सुख मिलता था। उस समय को याद करते हुए माँ ईश्वरअम्मा कहती हैं, मैं सत्या को अपने पास बुलाकर प्यार और दुलार से पूछती थी, सत्या तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। सत्या का एक ही उत्तर होता, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जो भी देंगी मैं उसी से संतुष्ट हूं, मेरी अपनी कोई पसंद या नापसंद नहीं है। सत्या के ऐसे उत्तर से माँ ईश्वरअम्मा उदास हो जाती। परंतु उन्हें क्या पता था कि जो सदा दूसरों के सुख और कल्याण में लगा रहता था वो अपने सुख और आराम के बारे में कैसे सोच सकता था। इसी को तो सच्चा और शुद्ध प्रेम कहते हैं। शुद्ध प्रेम दूसरों को देने में है, लेने में नहीं। बांटने में है, छीनने में नहीं। बिखेरने में है, अपने लिए जमा करने में नहीं। जब भी कोई भिखारी द्वार पर आवाज लगाता तो सत्या सारे काम छोड़कर बहनों को भिखारी को कुछ भोजन देने के लिए मनाने लगते थे। वास्तव में घर के सभी लोग सत्या की इस तरह की दयालुता से कई बार कठिनाई भी महसूस करते थे। एक बार माँ ईश्वरअम्मा सत्या को डांटते हुए कहती हैं, देखो सत्या, यदि तुम इस तरह से खाना भिखारियों को दोगे तो तुम्हें खुद भूखा रहना होगा। सत्या मां की चेतावनी की परवाह नहीं करते। वो भागकर अंदर जाते और खाना भिखारी को दे देते और खुद भूखे रह जाते। उसके बाद खाना परोसा भी जाता तो वो इसे कभी भी नहीं खाते थे। त्याग ही सच्चे प्रेम की निशानी है। अपनी इच्छाएं कम करके दूसरों के चेहरों पर खुशी लाना ही शुद्ध प्रेम कहलाता है। सत्या को गली में जब भी कोई अंधा, लूला, लंगड़ा या बीमार व्यक्ति दिखाई देता तो वो उसे अपने घर ले आते और अपनी बहनों को उन्हें अनाज या भोजन देने के लिए कहते। उन्हें खुश देखकर सत्या का चेहरा भी खुशी से चमक उठता। शुद्ध प्रेम ऐसा ही होता है। शुद्ध प्रेम निस्वार्थ रूप से भलाई करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता। जब भी गांव के बच्चे किसी पशु या पक्षी को तंग करते तो सत्या को बहुत दुख होता था। जब भी कोई व्यक्ति किसी मुर्गी को पकाकर खाने की सोचकर पकड़ता तो सत्या उसे मना करते। उसके हाथों से पक्षी को लेकर प्रेम से अपने सीने से लगा लेते थे। शुद्ध प्रेम घृणा और हिंसा को समाप्त करके केवल प्रेम की गंगा बहाता है। स्कूल में लेट आने वाले छात्रों को बेंत मारकर सजा दी जाती थी। समय पर पहुंचने वाले छात्रों को लेट आने वाले छात्रों के हाथ पर बेंत मारने को कहा जाता था। ये देखकर सत्या को बहुत दुख होता था। सर्दियों के दिनों में सजा से बचने के लिए बच्चे बहुत जल्दी ही स्कूल आ जाते थे। उन्हें ठंड से कांपते देख सत्या उनके लिए अपने घर से कपड़े आदि लाकर उन्हें पहनाते थे। ये देखकर घर वालों ने अच्छे अच्छे कपड़ों को पेटी में डालकर ताला लगा दिया। परंतु सत्या बच्चों की मदद करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। शुद्ध प्रेम दूसरों को मुश्किल से बाहर निकालने और उनके दुख को दूर करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। पुट्टपर्ती और कमलापुरम में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद सत्या को 4 किलोमीटर दूर बुक्कापट्टनम पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में कुछ शरारती बच्चे सत्या के घने बालों में कांटेदार गोले चिपका देते थे, परंतु सत्या ने उन पर कभी गुस्सा नहीं किया। शांत रहकर कष्ट को सहन कर लेते थे। 14 वर्ष के सत्या प्रातः स्कूल जाने से पहले बहुत जल्दी उठ जाते थे। अपना और अपने दादाजी का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाते, उसके बाद तैयार होकर पैदल स्कूल जाते। स्कूल में सत्या को सभी अध्यापक बहुत चाहते थे, उनसे प्रेम करते थे। ये देखकर कुछ लड़के सत्या से ईर्ष्या करते थे। वे उन्हें तंग करते थे, उन पर रेत और पानी फेंककर उनके कपड़े गंदे कर देते थे। परंतु सत्या उनके प्रति कभी दुर्भावना नहीं रखते थे। उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते थे, उन्हें अपना मित्र समझते थे। सत्या अपनी क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। वे क्लास के मॉनिटर थे। एक बार सत्या सारी क्लास में से अकेले घर का काम पूरा करके आए थे। बाकी 40 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। अध्यापक ने सत्या को क्लास के उन 40 बच्चों को एक एक थप्पड़ मारने को कहा। सत्या ने उन सबको थप्पड़ मारने के बजाय उनके चेहरों को केवल हल्के हाथ से छू दिया। इस पर अध्यापक को सत्या पर गुस्सा आ गया। अध्यापक ने सत्या को जोरदार 41 थप्पड़ मारकर बताया कि थप्पड़ कैसे मारे जाते हैं। सत्या ने अध्यापक की सजा को धैर्यपूर्वक सहन कर लिया। वास्तव में सहनशीलता, अदम्य सहनशीलता सच्चे प्रेम का एक विशेष गुण है। बुक्कापट्टनम के बाद सत्या उर्वाकुंडा में अपने भाई शीशम राजू के घर रहने लगे। यहां उन्हें एक बड़ा ही कष्टदायक और कठोर जीवन जीना पड़ा। उन्हें सारे परिवार के लिए पानी ढोकर लाना पड़ता था। इस कारण उनका बायां कंधा कठोर होकर काला पड़ गया था। इसी दौरान एक बार सत्या जब अपने घर पुट्टपर्ती आए तो मां ईश्वरम्मा ने उनके सारे शरीर की तेल मालिश की। मालिश करते समय मां ने देखा कि सत्या का बायां कंधा काला पड़ गया है और काफी कठोर हो गया है। मां ने सत्या से पूछा, तुम्हारा कंधा इस तरह काला क्यों है? उत्तर में सत्या केवल मुस्कुराए। परंतु मां के बार बार पूछने पर सत्या को बताना ही पड़ा कि ये निशान पानी को ढोने के कारण पड़ा है। भाई के परिवार और उनके दो पड़ोसियों के लिए उन्हें दिन में 6 बार दूर कुएं से कंधे पर पानी ढोकर लाना पड़ता था। मां ने कह दिया, सत्या तुम वापस घर आ जाओ, वे लोग तुम्हारी भलाई का अनुचित फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, उन्हें अपने घर के लिए पानी स्वयं लाना चाहिए। सत्या ने कहा, मां मैं ये सेवा अपना कर्तव्य समझकर करता हूं, मैं नहीं चाहता कि परिवार में लोग खारा पानी पिएं। मैं खुशी खुशी कुएं से मीठा पानी ढोकर लाता हूं, मैं सबकी सेवा करने के लिए ही तो आया हूं। सत्या का उत्तर सुनकर मां ईश्वरम्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी को कहते हैं सच्चा और शुद्ध प्रेम। स्वयं को कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े, परंतु दूसरों को सुख देने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। श्री सत्य साई के जीवन का कोई भी पृष्ठ खोलकर आप देख लें, आपको सत्य साई के प्रेम रूपी हीरों के असंख्य चमकते रंग और रूप दिखाई देंगे। सन 1989 के जन्म दिवस संभाषण में स्वामी ने कविता के माध्यम से पुटपर्ति के महत्व और अपने अवतारी मिशन पर प्रकाश डालते हुए कहा, पुटपर्ति समस्त विश्व का केंद्र है, जहां आत्मा स्वरूप भगवान ने अवतार लिया है। विश्व भर के नेक और भले लोग हजारों हजारों की संख्या में यहां इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहां उन्हें असीम सुख शांति और आनंद मिलता है। श्री सत्य साई बाबा ने विश्व को प्रेम और सभी धर्मों के मूल तथ्य की शिक्षा देने के लिए यहां अवतार लिया है। प्रेम अवतार श्री सत्य साई बाबा ने सभी को प्रेम से गले लगाकर उनके हृदयों को परम आनंद से भर दिया है। शुद्ध प्रेम के अवतार साई बाबा ने अपने 86 वर्ष के शरीर रूपी जीवन काल में हमें शुद्ध प्रेम का मार्ग दिखाया है। उनका जीवन ही उनका संदेश है, और संदेश ये है कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। जय साई राम।
भगवान ने प्रथम महाविद्यालय छात्राओं के लिए 1968 में अनंतपुर में स्थापित किया। फिर उन्होंने दूसरा महाविद्यालय छात्रों के लिए 1969 में बेंगलुरु में शुरू किया। तब से अब तक सैकड़ों छात्र छात्राओं ने श्री सत्य साई विश्वविद्यालय से न केवल अपनी निःशुल्क विद्या प्राप्त की, अपितु भगवान के प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर यहां से जाने के बाद अपना जीवन एक आदर्श जीवन बनाया। यद्यपि बहुत से विद्यार्थी साई का प्रेम अपने हृदय में लिए देश विदेश में नौकरी और व्यवसायों में जुट गए हैं, लेकिन कुछ भाई बहनों को स्वामी के अनुग्रह से साई संस्थानों में ही सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसका एक अनुपम उदाहरण है श्री एस रवि कुमार, जो न केवल प्रशांति भजन समूह की अगुवाई करते हैं बल्कि श्री सत्य साई सुपर अस्पताल में भी प्रतिदिन सेवा में लगे हैं। आइए अब हम उनसे हुई वार्तालाप सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वे किस प्रकार और कब भगवान के छात्र बने और किस प्रकार बचपन में ही भगवान के समक्ष भजन गाना शुरू किया।
सबको सप्रेम साई राम। रेडियो साई की इस प्रस्तुति साई का प्यार जीवन आधार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि रवि कुमार भैया आज हमारे साथ हैं।
इनका पहचान इनकी मधुर आवाज है।
प्रशांति निलयम मंदिर में रोज इनके भावपूर्ण भजन भक्तों को आनंद विभोर कर देते हैं, और इनके गाए हुए कवाली साई बिन रहा ना जाए हर साई भक्त गुनगुनाता रहता है। भैया, इस कार्यक्रम की शुरुआत में अगर आप साई बिना रहा ना जाए की दो पंक्तियां सुना दें।
जरूर।
साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, साई बिन रहा न जाए।
सुंदर,
धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मानता हूं कि भगवान के लिए भजन गाना तो सबसे बड़ी बात होता है। एक कोई भी कुछ भी गा सकता है, अगर थोड़ा भी कोई कुछ गा सकता है, अगर वो भगवान को, भगवान के सामने भगवान को अगर अर्पित कर सकता है, उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती।
जैसे आप जब ये बता रहे हैं तो याद आ रहा है जब एक छात्र भगवान के सामने जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि संगीत भगवान का आशीर्वाद है।
जरूर,
म्यूजिक इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड।
यस,
तो भगवान ने तब उस छात्र को कहा कि संगीत भगवान का आशीर्वाद नहीं है, संगीत ही भगवान है।
संगीत ही भगवान।
यस, इसलिए संगीत में जो ब्रह्मानंद है वो ब्रह्मानंद ही है। भैया एक और कवाली, कोई और कवाली जो आपको बहुत प्यारी है हमारे इस साई का प्यार जीवन आधार के लिए।
हाँ, जब आप साई का प्यार बोलते हो तो एक कवाली याद आता है जो हमने भगवान के सामने 2001 में हमने प्रस्तुत किया था। तो ऐसे शुरू होता है वो,
कौन है जिसने तला तुम में मुझे थाम लिया, कौन है जिसने किनारे पे लगा दी है मेरी कश्ती, कौन है जिसने जमाने के जुल्म खुद सहकर अपने सीने में छुपा ली, अपने सीने में छुपा ली, मेरी फाका मस्ती, हाँ जी वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, प्यार है वो, प्यार है वो, प्यार खुदा का, साई के प्यार की सूरत बयान नहीं होती, रहम की उसके कोई इंतहा नहीं होती, साई के प्यार की।
साई अनंत, उनका प्यार अनंत।
हाँ जी।
भैया आपने बचपन से भगवान के निकट आपकी शिक्षा प्राप्त की है, आपने प्राइमरी स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी पूरी पढ़ाई भगवान के सानिध्य में हुआ है, और उसके बाद भगवान के अस्पताल में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस में
आप अब तक सेवा करने का
अवसर भगवान ने प्रदान किया है। जब लगभग 40 साल जो आप भगवान के संस्पर्श में रहे हैं, बहुत सारी ऐसे यादें होंगी, बहुत सारे ऐसे पल होंगे जिनकी स्मृति आपको आनंद से भर देती होगी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आप भगवान के छात्र कैसे बने, क्या कहानी है उसकी?
जैसे आपने कहा कि बस भगवान का प्यार ही है और कुछ नहीं, अगर भगवान का प्यार नहीं है तो ये जो हमारा जर्नी जो बोलते हैं,
ये सफर
हमारा, तो ये इतनी आनंद से भरता नहीं। तो 40 साल पहले ठीक, मतलब 1978 में, तो जहां से मैं था, जहां मेरे पिताजी काम कर रहे थे, वो कर्नाटक में मडिकेरी करके एक जगह, वो कुर्ग माना जाता है, कुर्ग, तो वहां पिताजी काम कर रहे थे। तो वहां मैं सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ रहा था, और फिर वहां का स्कूलिंग इतना अच्छा नहीं था, और पिताजी सोचे कि इसको कहीं अच्छे स्कूल में डालना है। और कोई अंकल थे जो वहां साई समिति में थे, तब हम ऑलरेडी साई समिति में शामिल हो गए थे वहां 1978 में, तो उन्होंने बोला पिताजी को, स्वामी का एक स्कूल
एक वहां स्वामी स्टार्ट कर रहे हैं ऊटी में। तो पिताजी बोले चलो इसको ले जाते हैं। तो पिताजी को मालूम पड़ा कि ठीक थर्ड स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है और मेरा अगला साल मेरा थर्ड स्टैंडर्ड था।
परफेक्ट
था वो। तो पिताजी बोले चलो चलते हैं। तो वो सब प्रॉस्पेक्टस सब मंगाया तो हमने भर दिया और एक दिन निकले हम। हमारी गाड़ी में एक एम्बेसडर गाड़ी थी हमारी, तो उसमें पिताजी, मेरे माताजी, मेरी दीदी और मैं, हम निकल पड़े। और मडिकेरी से जैसे जब हम ऊटी जाते हैं तो बीच में मैसूर आता है और मैसूर और ऊटी के बीच में एक बंदीपुर जंगल आता है। जब हम जंगल के अंदर जा रहे थे तो एक मर्सिडीज बेंज का कार हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके ऐसे सामने गई।
आपने देखा ये गाड़ी?
हाँ, मैंने देखा कि एक कार जा रही है, गाड़ी जा रही है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, मर्सिडीज बेंज को देखना तो 1978 में तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं छोटा बच्चा था 7 साल का, तो मैं बहुत खुश हो गया। और फिर एक मिनट के बाद एक और मर्सिडीज बेंज हमारी गाड़ी को ओवरटेक की, तो मैं और भी एक्साइट हो गया, और भी खुश हो गया। पर इस बार दूसरी बार मेरे पिताजी मेरे से ज्यादा खुश हो गए थे। तो मैं सोचा क्या हो गया। तो पिताजी देख के बोले अरे दूसरी गाड़ी में तो स्वामी बैठे हैं खुद। क्योंकि बाहर वो कार में ना बाहर वो कर्टन थोड़ा पार्ट हुए थे और स्वामी के वो सुंदर बाल ऐसे। तो
पिताजी को पता चल गया,
पिताजी को पता चल गया स्वामी है। तो हम सबको भी पता चल गया हाँ स्वामी है। तो पिताजी बोले ड्राइवर को कि जल्दी चलाओ गाड़ी, स्वामी के पीछे पीछा करना है। तो हमको तो गए तो बंदीपुर जंगल में एक गेस्ट हाउस है, वहां गेस्ट हाउस में स्वामी रुके और एक जो पहला मर्सिडीज बेंज कार था उस गाड़ी में स्वामी वृंदावन कॉलेज के छात्र को ले जा रहे थे उनके साथ।
ओके।
और वहां रुके तो मालूम पड़ा कि स्वामी भी ऊटी जा रहे हैं। तो हम रुके वो गेस्ट हाउस में जहां स्वामी खाना खाने के लिए रुके थे। तो हम भी बाहर रुके और हमारे साथ कुछ 15-20 डिवोटीज भी थे वहां। तो स्वामी वो गेस्ट हाउस के अंदर जाने से पहले मेरे माता पिता की ओर देखे और स्वामी बोले पूछे कन्नड़ भाषा में पूछे कि आप लोग कहां से आ रहे हो।
ओके।
तो मेरे पिताजी बोले स्वामी हम कूर्ग से आ रहे हैं। तो स्वामी बोले अच्छा और अंदर चले गए और प्यारे भगवान हमारे इतने जो हम डिवोटीज बाहर खड़े थे हम सब के लिए प्रसाद भेजे। प्रसाद मतलब ऐसा इतना प्रसाद नहीं, पूरा प्लेट भर के खाना भेजे।
कितने लोग थे?
कुछ 20-25 लोग थे।
किसको मालूम नहीं भगवान इधर गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं?
हाँ रहने, हाँ वो इधर रुकने वाले हैं ऐसे मालूम नहीं थे। पर भगवान के कार के पीछे 3-4 कार और जा रहे थे जिनको मालूम था बेंगलोर से कि स्वामी वहीं जाने वाले, तो वो लोग थे स्वामी के पीछे। तो हम बैठ के खा रहे थे और जब हम खा रहे थे तो मेरी मम्मी पिताजी से पूछी कि स्वामी को मालूम है कि हम घर में तमिल भाषा बोलते हैं, फिर भी स्वामी हमसे क्यों कन्नड़ में बात किए। तो मेरे पिताजी बोले क्या फर्क पड़ता है, भगवान हमसे बात किए क्या फर्क, कौन सा भाषा में, हम तो कन्नड़ भी बात करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कन्नड़ या तमिल। तो खुश रहो कि स्वामी हमसे बात किए। तो मम्मी बोली हाँ वो भी ठीक है। तो मम्मी भी खुश हो गई थी। तो हम खाना खा के फिर हम खड़े थे स्वामी के लिए, स्वामी बाहर आए और बाहर आके वो स्टेप से नीचे उतर के मेरी मम्मी की तरफ सीधा देख के तमिल भाषा में पूछे साप्टा चा, मतलब खाना खा लिया क्या,
तमिल भाषा में।
तमिल भाषा तो साप्टा चा मतलब खाना खा लिया। और दूसरी क्वेश्चन जो उसके पीछे छिपी हुई थी वो है कि अब समझ गया
सर्वांतर्यामी
से। तो वो हमारा पहला मुलाकात था स्वामी से डायरेक्टली। तो वहां से स्वामी ऊटी गए और हम भी स्वामी के पीछे पीछे ऊटी गए। एक्चुअली मेरी मम्मी खुश नहीं थी कि मैं हॉस्टल में ज्वाइन होने वाला हूँ। मतलब कोई भी माँ उनके बेटे को मतलब पास ही रखना चाहती है, तो वो इतना खुश नहीं थी। पर पिताजी तो बहुत मतलब दृढ़ थे कि नहीं,
अच्छे स्कूल में,
अच्छे स्कूल में डालना और स्वामी का स्कूल है तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो गए और एंट्रेंस एग्जाम था तो मैं लिखा और बाद में वो नोटिस बोर्ड में जो सेलेक्ट हुए थे उनका नाम वो एक लिस्ट डाले थे उन्होंने। तो मम्मी पापा दोनों गए देखने के लिए और 30 नाम लगाए थे उस लिस्ट में। तो ऊपर से देख के आ रहे थे मेरा नाम नहीं था। तो मेरी मम्मी और खुश हो रही थी और मेरे पापा तो बहुत दुख हो रहे थे कि नाम नहीं है। पर लास्ट जो नाम था 30th
अंतिम
अंतिम नाम जो था तो वो मेरा नाम था,
एस रवि कुमार।
एस रवि कुमार।
तो इमीडिएटली मेरी
भगवान ने बोला यस
यस यस रवि कुमार
यस रवि कुमार।
तो हाँ, तो मम्मी इमीडिएटली दुख हो गई थी, उदास हो गई थी, और पापा तो बहुत खुश हो गए थे। और उस दिन फिर होटल में जाके लगेज लेके फिर मुझे हॉस्टल में एडमिट कर दिया।
हो गया हॉस्टल में?
हो गया हॉस्टल में, हो गया,
साई छात्र बन गया आप।
मैं तो बन गया साई छात्र। तो उसमें एक और छोटी बात हुई कि जैसे हम बात कर रहे हैं स्वामी के प्यार के बारे में, तो उस दिन रात को जब होटल गए थे मम्मी और पापा, तो वो होटल रूम में सोने के लिए जब सोए, तब दोनों तरह के जो दीवार हैं होटल के वो रूम का, तो पिताजी एक और मतलब उस तरफ मोड़ के सो रहे थे और माताजी उस तरफ, और दोनों रो रहे थे रात को। मतलब बाद में मेरे पिताजी बोले ये सब, तो माताजी रो रहे थे क्योंकि मैं अंदर चला गया था,
दुख की आंसू
और
उधर सुख की आंसू।
पिताजी भी रो रहे थे क्योंकि मैं अंदर चला गया, पर सुख की आंसू थे। और फिर सो गए, तो नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह दर्शन के लिए आए थे। वहां एक बहुत सुंदर सा एक फाउंटेन रहता था, वो ऊटी नंदनवनम स्कूल के बाहर,
पानी और गार्डन।
तो वो गार्डन का वो जो सर्कल में, वहां डिवोटीज बैठते थे दर्शन के लिए, तो एक तरफ जेंट्स और एक तरफ लेडीज। तो स्वामी आए सुबह सुबह, मैं तो अंदर हूँ हॉस्टल में, ऑलरेडी एक रात हो गया था मेरा हॉस्टल में। तो स्वामी आते आते पिताजी को देखे, पिताजी कहीं फर्स्ट लाइन में नहीं बैठे थे, जहां मिल गया था टोकन कहीं पीछे बैठे थे। तो स्वामी आए और दूर से देखे, और पिताजी को कन्नड़ भाषा में स्वामी बोले कि वो अंदर ठीक है वो अंदर। ऐसे मतलब एक एश्योरेंस जैसे ना, तो ऐसे बोले ठीक है। और लेडी साइड में गए, लेडी साइड में मेरी माताजी भी बैठी थी, वो भी कहीं पीछे बैठी थी। तो आके मेरी मम्मी को वहां दूर से देख के, और मम्मी तो रो रही थी दर्शन में भी रो रही थी, और स्वामी उनको देख के बोले कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसका देखभाल करूंगा। तो ये दर्शन लाइन में बोल दिए, और स्वामी मतलब ऐसे मतलब हमारी भाषा में बोल दिए थे मम्मी को। तो एक बार ये जो स्वामी बोले कि
ये जो आश्वासन, मैं सब कुछ करूंगा, मैं पूरा देखभाल करूंगा,
मैं इसका देखभाल करूंगा, तो उस तुरंत मेरी मम्मी के मतलब आंसू बंद हो गए थे, और बहुत खुश हो गई थी मम्मी की, हाँ जब स्वामी ही बोल रहे हैं कि मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए,
क्या इससे क्या आशीर्वाद
आशीर्वाद हाँ इससे बड़ी आशीर्वाद तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा शुरू हुआ, और तो ये जो आशीर्वाद दिया भगवान ने मेरे मम्मी और पापा को कि मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, तो 40 साल से तो वही हो रहा है, या ओटी स्कूल में, या वृंदावन में, या पुटोपर्ती में, या अभी हॉस्पिटल में, हर एक दिन मतलब स्वामी का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है मेरे को।
आपका पहला भजन भी आपने भगवान के समक्ष ऊटी में ही गाया था ना?
वो हुआ था वो पहला ही दिन जो सुबह स्वामी मम्मी और पापा को ऐसे बोले थे, उस दिन शाम को वो पहला सेशन जो था, हम सारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए थे, तब हम सब एक हॉल में बैठे थे, और मैं हॉल के एंड में लास्ट में बैठा था, और स्वामी अपने सिंहासन पे बैठे थे, और ऐसे मतलब वो सेशन चल रहा था, कोई लोग बात कर रहे थे ऐसे, तो स्वामी बीच में रुक के हाथ ऐसे करके हॉल के लास्ट में ऐसे उंगली दिखाए स्वामी, और बोले कि ये जो बंदर का कैप
ठंड के लिए, मंकी कैप,
मंकी कैप जो बोलते हैं, वो जो बंदर का कैप होता है, वो जो बंदर का कैप जो पहना लड़का, उठो बोले। हम सब छोटे बच्चे थे, सबको तो ठंड लग रही थी, तो हम सब पहने थे मंकी कैप, तो सब इधर उधर देख रहे हैं कि मंकी कैप कौन पहना है, सब लोग पहने थे। और फिर स्वामी आंखों में आंखें डाल के बोले, नहीं तुम, ऐसे बहुत स्पेसिफिकली कि तुम, और सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। तो मैं सोचा हाँ मैं ही हूँ, तो उठ गया था, और स्वामी देख के बोले चलो कुछ गाओ। तो ये पहला ही दिन था जब मैं आया, तो मतलब पहले ही दिन स्वामी तय कर लिया, तू अगर तुम मुझसे कनेक्ट करोगे तो भजन के माध्यम से तुम कनेक्ट करोगे,
तुम्हारा मेरा संबंध भजन के साथ,
भजन के साथ। हर एक का कोई ना कोई रास्ता होता है स्वामी से संबंध बनाने का। तो उस दिन स्वामी शायद तो तय कर लिए थे कि ये इसका होगा। तो
कौन सा भजन आपने गाया उस दिन?
वो एक साल पहले मेरे पिताजी मुझे एक भजन सिखाए थे जो मैं घर पे गाया था, वो मेरा फेवरेट भजन था। ये भी है कि जहां भी हम भजन गाते हैं स्वामी तो डेफिनेटली वहां उपस्थित हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। तो स्वामी बोले कुछ गाओ, पहले दिन सुन रहे थे हमारे घर पे तो मैं बोलो नारायणा जय जय विठला,
बोलो नारायणा जय जय विठला,
वो भजन गाया था।
प्लीज अगर आप कृपा करके दो पंक्तियां इस भजन
अभी फॉलो करेंगे।
हाँ जरूर।
बोलो नारायणा जय जय विठला,
बोलो नारायणा जय जय विठला,
साई नारायणा रंग रंग विठला,
साई नारायणा रंग रंग विठला,
बोलो नारायणा जय जय विठला,
बोलो नारायणा जय जय विठला,
गोविंद विठला रखुमाई विठला,
गोविंद विठला रखुमाई विठला,
गोपाल विठला पांडुरंग विठला,
गोपाल विठला पांडुरंग विठला,
श्रीरंग विठला साई रंग विठला,
श्रीरंग विठला साई रंग विठला,
बोलो नारायणा जय जय विठला।
स्वामी ने उनके बचपन में पंडरी भजन ग्रुप शुरू किया था ना, छोटे छोटे बच्चों को लेके।
हाँ।
और आपका भी भगवान के साथ ये सफर, संगीत सफर, एक विठला वजह से शुरू हुआ है।
हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही,
बहुत बढ़िया। ऐसे लगता है कि ये वार्तालाप अब अंत नहीं करें। ये तो चलना चाहिए।
जैसे स्वामी का प्यार का तो कोई अंत ही नहीं है,
अंत नहीं है।
तो
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि रेडियो साई अब हर मंगलवार 7:30 से 8:30 तक एशिया स्ट्रीम पर हिंदी के कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर रहा है, और आप इन हिंदी कार्यक्रमों का आनंद लें, इनको सुने और आपका जीवन पावन करे। आनंद की लहर घर घर पहुंचानी हिंदी में आई साई प्रेम वाणी। और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत
इस शुभ शुरुआत के लिए। साई राम,
साई राम,
सबको साई प्रेम, साई राम,
साई राम।
तो ये थे हमारे श्री एस रवि कुमार जी, और उनसे वार्ता में थे रेडियो साई के श्री बिशु पृष्टि। भगवान ने अपने अवतरण की घोषणा 20 अक्टूबर 1940 में भजन मानस भजरे गुरुचरणम के साथ की थी। भगवान ने हर अवसर पर नामस्मरण की साधना को अपनाने को कहा, क्योंकि कलयुग में ईश्वर प्राप्ति का इससे सुलभ और कोई मार्ग नहीं है। नामस्मरण की इस परम साधना को ध्यान में रखते हुए हमारा अगला कार्यक्रम साई भजन को सुर और लय में सीखने का अवसर देगा।
साई राम, रेडियो साई के भजन सीखने के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम उस मधुर भजन को स्वर और राग के साथ कंठस्थ करेंगे जिसमें हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा को सर्व देवता स्वरूप के रूप में ध्याया गया है। साई राम को सभी भक्त, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्हें हृदय से पूजते हैं। इस भजन की यही अपार महिमा है। आइए सर्वप्रथम हम इस भजन के शब्दों को जान लें।
बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय सत्य साई राम, बोलो जय सत्य साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम। मंदिर में साई राम, मस्जिद में साई राम, गुरुद्वारे में साई राम, गिरजा घर में साई राम, बोलो जय सत्य साई राम, बोलो जय सत्य साई राम।
अब हम भजन को संगीत के साथ सीखेंगे। जैसे जैसे रवि कुमार भैया एक एक पंक्ति गाएंगे, आप सभी भी उनके बाद उसी सुर और लय में गाएं। इस भजन का स्केल ई पंचम लिया गया है, जिसे हिंदी के स्वर ग्राम में सफेद तीन कहते हैं।
बोलो जय साई राम, 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 बोलो जय सत्य 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 साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, मंदिर में साई राम, मंदिर में साई राम, मस्जिद में साई राम, मस्जिद में साई राम, गुरुद्वारे में साई राम, गुरुद्वारे में साई राम, गिरिजाघर में साई राम, गिरिजाघर में साई राम, बोलो जय सत्य 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 साई राम, बोलो जय 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 सत्य साई राम, जय सत्य साई राम।
ताकि आप सब इस भजन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकें, हम अब इसे उसी प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जिस प्रकार इसे भगवान के समक्ष प्रशांति मंदिर में गाया जाता है। आप सब न केवल इसका श्रवण करें अपितु हमारे साथ इसे गाएं, क्योंकि केवल भजन ही है जो आपके मन को, आपके हृदय को परमानंद से भर सकते हैं।
बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय साई राम, बोलो जय सत्य साई राम, बोलो जय सत्य साई राम।
हमें आशा है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम फिर से साई प्रेम वाणी के कार्यक्रम में एक नए भजन के साथ आप सभी श्रोताओं को आनंदित करने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय साई राम।
स्वामी से हमारी विनती है कि साई भजन हमारे श्वास बन जाएं, उनका पवित्र प्रेम हमारी शक्ति बने और उनकी महिमाओं और लीलाओं का श्रवण हमें प्रोत्साहित करे कि हमारा जीवन उनका संदेश बन जाए। इस हृदय पुकार के साथ हम हमारी यह प्रस्तुति को विराम देते हैं। यदि आपको कोई पूछताछ करनी हो या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमसे ईमेल द्वारा संपर्क साध सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9393258258 द्वारा अपने सुझाव भेज सकते हैं। नंबर हम फिर से दोहराते हैं, 9393258258। अब आप सब श्रोताओं से हम अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मंगलवार शाम 7:30 से 8:30 मिलेंगे। सभी को सब प्रेम, साईं राम।